नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद छ अध्याय एक श्लोक संख्या छः। आधुनेह महाभाग जथेव नरकान्नरः नानोग्रयातनानेयान् तन्मे आख्यातुमर्हसि। आधुनेह महाभाग जथेव नरकान्नरः नानग्रयातनान् एता तन्मे वाख्यातुमर्हसि। आधुनेह महाभाग जथेब नरकान्नरः नानग्रयातनान्नेया तन्मे वाख्यातुमर्हसि। अधुनेय महाभाग तथैव नरकान्नरः नानग्रयातनानेतान् तन्मे वाख्यातुमर्हसि। अधुनेय महाभाग जथेब नरकान्नर नानग्रयातनानीयात् तन्मे वाख्यातुमर्हसि। अधुनेह महाभाग जथेब नरकान्नर नानग्रयातनानेया तन्मे वाख्यातुमर्हसि। अधुनेह महाभाग जथैव नरकान्नर नानग्रयातनानेया तन्मे वाख्यातुमर्हसि। अधुनेह महाभाग जथेब नरकान्नर नानाग्रह यातना नेयान तन में बख्या तुम रहस्य। माता जी शब्दांत अधुना संप्रति यह इस भौतिक जगत में महाभागा हे महान ऐश्वर्यवान तथा भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी जथा जिससे एव निसंदेह नरकान नारकीय स्थितियां जिनमें अधर्मियों को रखा जाता है नरह मनुष्य नाना अनेक प्रकार के उग्र जातनान भयावह जातनाओं या कष्टों को न इयात न भोग करे तत् ओह मैं मुझसे बाख्या तुम वर्णन करने के लिए अरहसी कृपा करे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइए अनुवाद। हे परम भाग्यशाली तथा ऐश्वर्यवान सुखदेव गोस्वामी अब आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि मनुष्य को किस तरह उन नारकीय स्थितियों में प्रवेश करने से बचाया जा सकता है जिनमें उन्हें भीषण यातनाएं सहनी पड़ती है। तात्पर्य पंचम स्कंद की 26वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने बतलाया है कि जो लोग पाप कर्म करते हैं उन्हें नरक लोक में प्रवेश करने के लिए तथा कष्ट उठाने के लिए बाध्य किया जाता है। क्योंकि महाराज परीक्षित भक्त हैं अतः अब उन्हें चिंता है कि इसे किस तरह रोका जा सकता है। वैष्णव पर दुख दुखी होता है। दूसरे शब्द में उसे निजी कष्ट नहीं होता किंतु अन्य को दुख देखकर वो दुखी होता है। प्रह्लाद महाराज ने कहा हे प्रभु मेरी अपनी समस्या नहीं है क्योंकि मैंने आपकी दिव्य गुण का गुणगान करना सीख लिया है अतएव मैं भाव समाधि में प्रवेश कर सकता हूं किंतु मेरी एक समस्या है क्योंकि मैं इन धूर्तों तथा मूर्खों के विषय में सोचता रहता हूं जो माया सुख अर्थात क्षणिक सुख में लगे हैं और जिन्हें आपकी भक्ति का कोई ज्ञान नहीं है। वैष्णव के समक्ष वही समस्या रहती है क्योंकि वैष्णव पूर्णतया भगवान की शरणागत होता है अतएव उसकी अपनी कोई समस्या नहीं रहती किंतु पतित बद्धात्माओं के प्रति दयालु होने से वह उनको इस जीवन में तथा अगले जीवन में नारकीय जीवन से बचाने की योजनाओं के विषय में सदैव सोचता रहता है। इसलिए परीक्षित महाराज ने उत्सुकता पूर्वक सुखदेव गोस्वामी से यह जानना चाहा कि मानवता को किस तरह नरक में गिरने से बचाया जा सकता है। सुखदेव गोस्वामी पहले ही बता चुके थे कि लोग किस तरह नरक के जीवन में प्रवेश करते हैं और वे वो भी बता सकते हैं कि उन्हें किस तरह से बचाया जा सकता है। बुद्धिमान लोग को इन उपदेशों का लाभ उठाना चाहिए किंतु दुर्भाग्यवश संपूर्ण जगत में कृष्ण भावनामृत का अभाव है अतः लोग विकट अज्ञान से पीड़ित हैं और इस जीवन की बात के जीवन में विश्वास तक नहीं करते। उनकी अगले जीवन के विषय में आश्वस्त कल्पना बहुत कठिन है क्योंकि वे भौतिक भोग की खोज में मदांध प्राय हो चुके हैं, फिर भी हमारा कर्तव्य है, सारे विज्ञ जनों का कर्तव्य है कि उनको यह ज्ञान बताएं। महाराज परीक्षित उन लोगों के प्रतिनिधि हैं जो उन्हें बचा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञान तमिरांधस्य ज्ञानांजन सलकाय चक्षुर उन्मलितम जेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज की सत्संग के पहले मैं सभी वैष्णव के चरण कमल में प्रणति करता हूँ और विशेष करके जो वरिष्ठ वैष्णव हैं सबके चरण में मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कृपा से मैं दो शब्द दोहरा सकता हूँ। तो आज जो प्रसंग चल रहा है तो भगवान किस प्रकार अपने भक्तों को पोषण करते हैं, अर्थात बड़े बड़े भक्तों का भी कुछ यदि दोष हो जाता है कुछ पाप कर्म भी हो जाता है, भगवान अपने कृपा से उन पाप कर्मों को नष्ट करके उनको पुनः अपने भक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए हैं इसको भगवान की पोषण कहा जाता है। ये जो छठा स्कंद है ये छठा स्कंद को पोषण के नाम से श्रीधर स्वामी आख्यात करते हैं वर्णन करते हैं। तो इस अध्याय में जो पहले के अध्याय हैं तीन अध्याय उसमें अजाम्बिल की चरित्र है, उसके पश्चात छह अध्याय में विश्वरूप की वर्णन है, अर्थात जानते हैं जो तोष्टा के पुत्र थे और इंद्र ने उनको पुरोहित के रूप में मनाए थे। जय श्री श्री कौनिताय की जय। श्री श्री राधा रस बिहारी ललिता विशाखा जी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। तो इस प्रसंग में और जो आठ अध्याय हैं तो उसमें वृत्तासुर की वर्णन है, जो चित्रकेतु राजा थे तो उनको कैसे असुरजोनि प्राप्त हुआ, और आखिरी दो अध्याय में मरुदगण की वर्णन है। तो इस प्रकार इस छठा स्कंद में 19 अध्याय हैं। तो अभी पहला अध्याय जो है उसमें विष्णु दूतों की कृपा से अजाम्बिल कैसे जमराज की दूतों से छुटकारा प्राप्त किए तो इसकी वर्णन है। तो हम प्रारंभ में देखते हैं इस अध्याय के प्रारंभ में परीक्षित महाराज जो सुखदेव गोस्वामी से पांचम स्कंद की वर्णन सुन चुके थे इसको पुनर्वार उन्होंने दोहराए उन्होंने कहे कि आप पंचम स्कंध में विभिन्न प्रकार की लोकों की वर्णन किए हैं और मनुवंश जिसमें प्रियव्रत महाराज की चरित्र को वर्णन किए और साथ साथ जो विभिन्न लोक हैं इस विभिन्न लोगों की सृष्टि कैसे भगवान के द्वारा होती है और जीव को अपने इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए भगवान कैसे अवसर प्रदान करते हैं और जीव अपने कर्मों में से किस प्रकार नरक की कष्ट को प्राप्त करता है अभी आप वर्णन किए हैं। इसमें कह रहे हैं कि अधुना इह, आप अभी अभी इसकी वर्णन किए हैं 28 नरक जो जीव अपने पाप कर्म से प्राप्त करता है। नरक की प्राप्ति कैसे होती है? अपने पाप कर्म से। और उस पाप कर्म से नरह नाना उग्र जातना प्राप्त, मनुष्य को बहुत बड़े बड़ी जातना बा कष्ट दी जाती है, परंतु इस नरक से नरकात न एत कैसे लोग न जाए तत् उसकी प्रक्रिया बा कैसे मनुष्य नरक की कष्ट न भोग करे इसकी उपाय अरहसी व्याख्या तुम आप कृपा करके मुझे बोलिए। तो पहला इस श्लोक में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को महाभाग शब्द से संबोधित करते हैं, इसको कहते हैं भाग्यवान। तो सचमुच आज संसार में लोगों को हम कहते हैं वो महान है, भाग्यवान है। कौन है? ना जिसके पास बहुत धन संपत्ति है, ऐश्वर्य है, सुख सुविधाएं हैं, तो उनको हम मानते हैं भाग्यशाली। परंतु शास्त्र के अनुसार वो भाग्यशाली नहीं है, वो दुर्भागा है। कि वास्तविक जिनको भगवान की अनुकंपा प्राप्त नहीं हुआ है, कृपा प्राप्त नहीं हुई है, वो वास्तविक दुर्भाग्य है, भाग्यहीन है। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शिव उमा को संबोधन करके कहते हैं, ये अरण्य कांड में, सुनहुं माते लोग अभागी हरि तेज होई विषय अनुरागी। कहते वो भाग्यहीन बा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यशाली हैं जो भगवान को त्याग करके 20 रूपी विषय को भोग करते हैं। ये धन संपत्ति पुत्र परिजन के साथ जो विषय रूपी 20 को पी रहे हैं वो वास्तविक क्या है? अभागा है। और भाग्यवान कौन है? रामा विलासी राम अनुरागी त्याजत बमना जिमी जन बड़भागी। कहते भगवान श्री राम की प्रेम में जो अनुरागी हैं, जिनका राग है, और ये विषय को उन्होंने बमन उल्टी की तरह त्याग कर देता है, तो वास्तविक बड़ा भाग्यशाली है। इसलिए दसम स्कंद में भी वसुदेव के लिए भी ये शब्द आया है महाभाग वसुदेव, कि वास्तविक वसुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किए, कितने बड़े भाग्यशाली है। तो यहां भाग्यशाली शब्द महाभाग शब्द से परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं महान ऐश्वर्यवान, अर्थात कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य है। निवृत तरसई, आप समस्त प्रकार की सुख सुविधा को त्याग करके, जंग प्रभजंत अनुपेत्य उपेत्य कृत्यम दैपायनम विरह कातर आजुहाब पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेतुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तस्मि। तो सुखदेव गोस्वामी यहां तक कि अपने ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी इस ब्राह्मण संस्कार को स्वीकार नहीं किए, और उन्होंने इस मुक्ति को प्राप्त करने की इच्छा रखकर के जंगल की ओर दौड़ चले, और जो समस्त वैदिक शास्त्र के रचयिता व्यासदेव ने अपने पुत्र के वियोग में उनको पुकारने लगी, हे पुत्र, हे पुत्र, तुम कहां जा रहे हो? परंतु इस शब्द को सुनकर कि सुखदेव गोस्वामी ने कोई जवाब नहीं दिए, परंतु वृक्ष ने जवाब दिए। आप इतने बड़े विद्वान होकर के भी हम लोग के भी ऐसे भी भावना नहीं रहता है, मेरी ये पुत्र है, पत्नी है, क्योंकि हम तो वृक्ष जाति की हैं। तो वृक्ष ने ऐसे व्यासदेव को उत्तर दिए, जवाब दिए कि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते वो सुखदेव गोस्वामी जो मौन को धारण किए थे और सभी जीवों का हितकारी थे, जंग स्वान भाव अखिलम श्रुति सार एकम अध्यात्म दीप अति तीर्थ सताम। कहते उन्होंने इस अध्यात्म ज्ञान में इतने बड़े चढ़े थे, कृष्ण के दर्शन के अलावा और कुछ उनके मन में अभिप्राय व इच्छा व अभिप्सा नहीं थी। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं, महाभाग, अब समस्त वैदिक साहित्य में, समस्त वैदिक शास्त्र में निपुण हैं और पराबरह वेद विदु हो, आप अच्छा बुरा अर्थात श्रेय और प्रेय के विषय में आपको सब कुछ जानकारी है, सब कुछ अभिज्ञ है। तो आप जो नरक की वर्णन किए, लोग अपने अशुभ कर्म से उसको प्राप्त करते हैं, इसके बारे में वर्णन कीजिए, क्योंकि एक वैष्णव हमेशा दूसरे के दुख में दुखी होता है। वैष्णव पर दुखे दुखी, वैष्णव के एक प्रधान लक्षण है, वो है करुणा, और इस करुणा को तभी एक वैष्णव हृदय में धारण करता है जब उनकी फांस सहिष्णुता हो। इसलिए साधु की जो लक्षण कपिल देव बताते हैं, पहला लक्षण क्या बताते हैं, तितिक्षव, दूसरा है कारुणिक। ये करुणा किसके पास रहता है, कृष्ण के पास, हम कहते हैं कृष्ण करुणा सिंधु। तो ये करुणा को दयनीयता के पात्र से गुरु इसको प्राप्त करता है, प्राप्तस्य कल्याण गुणान्नवस्य, इस गुण को गुरु प्राप्त करता है। अरे इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस गुरु की भूमिका निभाने के लिए और सबको इस कृष्ण प्रेम की शिक्षा देने के लिए करुणया अवतीर्ण कलौ, कलिजुग में अपने अहेतु की कृपा से स्वयं श्री कृष्ण उस करुणा को सागर को लेकर के सबके पास पहुंचाए। भगवान कृष्ण तो यही नियम लगाते हैं, जे जथामंग प्रपदन्ते तांग तथैव भजाम्य हम, और उनकी मिशन है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता। करुणा होने पर भी वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, साधुओं की सुरक्षा करते हैं और दुष्टों की संहार करते हैं। कृष्ण जानते हैं कि धर्म जो है वो भक्तों के द्वारा, साधुओं के द्वारा ही रखा होता है। इसलिए भगवान पहले भक्तों की रक्षा करते हैं, और स्वयं भगवान कैसे भक्त बनना चाहिए इसको शिक्षा देने के लिए वो महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। यह है उनकी करुणा। तो वैष्णव के पास अपने कोई चिंता नहीं रहता है, परवाह नहीं रहता है कि मेरे कैसे स्थिति सुधरेगा, हां मैं कैसे ऐश्वर्यशाली बन जाऊंगा, मैं कैसे सुखी रहूंगा, उसका भी ऐसा चिंता नहीं रहता है। वास्तविक जो भक्त होता है इसको कहते हैं महात्मा, विशाल हृदय वाले। उसकी हृदय इतनी विशाल है उसमें अपना और पराई उस दिखाई नहीं पड़ता है। वो कौन सा श्लोक है असीम प्रभु, कल बता रहे थे? हां, अयम ममः अयम निजः परवेतिः गणनाम क्षुद्र चेतसा, गणनाम क्षुद्र चेतसाम। जो ये अपना और पराई को देखता है उसके अंदर क्या है, बहुत संकीर्णता है। और जिसकी हृदय विशाल है, हां जो कहते हैं क्या है, कौन सा चेतसा, उदार चेतसाम, उदार चरितानम वसुदेव कुटुंबकम। उसकी हृदय हमेशा ही उदार है, अर्थात उनकी कोई अपना पराई नहीं है, समदृष्टि है। तो समदृष्टि का क्या लक्षण है, कहते भगवान गीता में कहते हैं सम अहम सर्वभूतेषु नामे द्वसी अस्ति नप्री। भगवान कहते हैं कि मैं सभी जीव के प्रति समान भावना रखता हूं, अर्थात मेरे किसके प्रति ना ही द्वेष है ना किसी के प्रति अति प्रेम है। तो भगवान कैसे द्वेष नहीं करते हैं, कहते असुरों को तो संहार किए। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछे कि किस प्रकार कि असुर लोग तो ऐसे ही कहते हैं कि इंद्र की पक्ष लेकर कि भगवान विष्णु ने पक्षपात करता है, पहले तो अच्छा था लेकिन इंद्र ने उनको चपलेसी करके, उनको तेल लगा करके अपना पक्ष कर लिया, इसलिए ये असुरों को संहार कर रहा है। नहीं तो विष्णु के पास ऐसा गुण नहीं था, लेकिन विष्णु भी फंस गया है। तो फिर इसके उत्तर सुखदेव गोस्वामी देते हैं कि भगवान असुरों को संहार करने पर भी उनको मोक्ष गति प्रदान करते हैं। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनिश्यत्स विनिश्यन्तं जपस्यति सपस्यति। हमारे जो मित्र होता है हम हमेशा उनके साथ मित्रता रखते हैं, साथ में चलते हैं, उनके आसपास में रहते हैं, और जो हमारी बुराई करता है, निंदा करता है, हमसे अच्छा रिलेशन नहीं है, तो हम भी उनसे दूर रहते हैं। परंतु भगवान के पास इस प्रकार विचार नहीं है, भगवान ऐसे नहीं करते हैं। इसलिए भगवान सबकी हृदय में स्थिति है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वर। इसलिए भगवान राग द्वेष से अतीत हैं, और जो भगवान के भक्त होता है सचमुच इस साधु भावना को प्राप्त कर लिया है उसकी भी समा दृष्टि रहता है। युधिष्ठिर महाराज जैसे महानुभाव, उनके लिए नकुल सहदेव जैसे थे, भीम और अर्जुन ऐसे ही थे। इसलिए समा दृष्टि, ये दोनों आंख हैं, यदि एक आंख भी खराब हो जाता है दूसरे आंख के ऊपर उसकी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए दृष्टि को यदि हम सुधार लेते हैं तो सृष्टि के जो भी क्रिया प्रक्रिया हमको देखते हैं ये भी सब बदल जाता है। तो साधु जो है वो समचित्तानं, सबके प्रति समान भावना रखता है, अर्थात वो जैसे ही अपने दुख को देखता है दूसरे के दुख भी ऐसा ही अनुभव करता है। चाणक्य पंडित क्या कहे, लोष्ट्रवत परदर्वेशु, मातृवत परदारेशु, आत्मवत सर्वभूतेशु जपस्यति स पंडिता। तो वास्तविक जो विद्वान है, जो पंडित है, उनके पास है समदर्शी गुण। और ये समदर्शी गुण में यही रहता है कि अपने समान ही दूसरे के दुख को देखना चाहिए। अपने सुख के लिए हम कुछ भी बदल सकते हैं नियम को, ये वास्तविक साधुता नहीं है। अपने को दुख में डाल करके जो दूसरे के उपकार करे तो वो है वास्तविक साधु। वैष्णव जनता तेन कहिए जो पर फिराई जानत, जो दूसरे के दुख देख करके उसके हृदय में पीड़ा नहीं है वो कभी वैष्णव नहीं बन सकता है। वो वैष्णव भास है, आभास। इसलिए प्रभुपाद बोले कि प्रीचिंग इज द एसेंस। ये प्रचार ही वास्तविक जीव के प्रति करुणा है, और इस करुणा को स्वयं महाप्रभु प्रदान करने के लिए हां भक्त रूप को धारण करके उन्होंने इस प्रचार कार्य किया। प्रीचिंग मोमेंट प्रचार ही ऐसा। तो वैष्णव जीता है किस लिए, दूसरे के लिए, नहीं तो वो तो पहले तो मर चुका है। संसार की विषय भोग से वो पहले से मरा हुआ है। प्राण आची यार इथी लागे प्रचार। तो परीक्षित महाराज ये अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, उनको देखिए अभी 7 दिन के अंदर मरने वाले हैं। अभी लगभग 2.5 दिन बीत गया है और उसी बीच में वो प्रश्न कर रहे हैं कि देखो इतनी मनुष्य हैं, ऐसे अपने पाप कर्म से नरक जा रहे हैं, इसके तो कुछ ना कुछ उपाय बतलाइए। ये नहीं कर रहे हैं कि मुझे श्रृंगी मणि के सांप मिला है, मुझे तो कुछ उपाय दीजिए कि मैं कैसा करूं। उन्होंने सभी के श्रेय के बारे में जिज्ञासा किए थे पहला स्कंद के अंतिम में, कि जो सामान्य लोगों के लिए जो श्रेय प्रदान करने वाला है उस विषय में बताया। तो अभी परीक्षित महाराज ये कह रहे हैं, नरह नाना उग्र जातनात नयेत। उनको कैसे इसे उग्र जातना बहुत कष्ट प्राप्त ना हो इसके उपाय बतलाए। अर्थात वैष्णव अपने दुख को ही सुख मान लेता है, सांप को वो संपत्ति मानता है, परंतु दूसरे कष्ट को वो बाण जैसा उनको लगता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद इस प्रहलाद महाराज की भावना को स्थापित किए, इस तात्पर्य में लिखे। प्रहलाद महाराज भी नृसिंह देव से यही प्रार्थना किए, नैव दिजे पर दुरतया वै तरन्या तदवीर जगायने महा मृतमग्न चित्तः सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थन माया सुखाय भरमुद बहतो विमूढ़ान। प्रह्लाद जी कहते हैं न एव उद्यजते, मैं उद्विग्न नहीं हूं। किसमें उद्विग्न नहीं है, तुरतया बैतरण्या। ये बैतरणी एक नदी है जिसको हम बिरजा कहते हैं, उसके इस पर जितने जीव हैं ये सब कष्ट भोग कर रहे हैं नारक के जातना। और जीव को जब मोक्ष प्राप्त होता है तो ब्रह्म संहिता में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि पहला जीव को उस बिरजा नदी में स्नान करवाया जाता है तो फिर उनको एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, परंतु जो बैतरणी को पार करके आए हैं तो उनको नरक की यातना ही भोग करना पड़ता है कष्ट। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं, प्रहलाद जी भी महाभाग है, उनकी हृदय कितनी विशाल है, वो कहते हैं उसमें मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे नरक जन्म में जाए वहां मैं स्वर्ग के सुख भोग करूं, उसमें मैं कोई चिंता नहीं करता हूं। क्यों आप चिंतित नहीं है? प्रहलाद जी कहते तदवीर जगायन महामृतम अग्न चित्त, क्योंकि प्रभु मेरी चित्त आपकी अमृतमय कथा को गान करने में मग्न हो गया हूं, परंतु मेरे एक शोक है। सोचे नृसिंहदेव पूछे, फिर आप क्यों इतने शोक करें, चिंता तो नहीं है फिर शोक करने का क्या आवश्यकता है? प्रहलाद जी कहते हैं सोचे तत् विमुख चेतना चेतसा, जो इसी प्रकार जिसकी मान आपकी गुणगान में नहीं लगा हुआ है, जो अमृत प्रदान करने वाले हैं उनकी विषय में सोच रहा हूं। तो नृसिंहदेव कहें ठीक है मेरी गुणगान ना करते हैं तो मैं तो उनके भरण पोषण करता हूं। कहते आप तो प्रभु कृपामय हैं तो सभी जीव क्यों भरण पोषण करते हैं, आपके अंदर कोई शत्रु मित्रता नहीं है, परंतु वो जीव जो सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए जो उपाय उसको त्याग करके वो माया सुखाय जिसमें कोई स्थिति नहीं है असत्य है, उस सुख को प्राप्त करने के लिए माया सुखाय भर मुद वह तो विमूढ़, उन मूर्खों के बारे में मैं सोच रहा हूं जो झूठी सुख जो वास्तविक सुख नहीं है इसको प्राप्त करने के लिए दिन रात भार ढोते रहते हैं गद्दे की तरह। विमूढ़ा मतलब गद्दा है वो खरा। तो इसी प्रकार प्रहलाद जी जैसे भगवान नृसिंह देव से स्तुति किए प्रार्थना किए कि कैसे सामान्य लोगों की कल्याण हो, इसी प्रकार जितने भी वैष्णव होते हैं ये केवल बड़े बड़े वेद के ज्ञान को प्रदान नहीं करते हैं परंतु उपासना सिखाते हैं कि किस प्रकार भगवान को हम अफर करें निवेदन करें, इसको कहते उपासना कांड, अफरिंग अदरवाइज सफरिंग। अगर यदि हम समर्पण नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से सफरिंग है, इसमें कोई शंका नहीं। सिखाओ शरणागति भकतेर प्राण दैन्य आत्मा निवेदन गोतृप्ते वरण। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु भक्त बनकर के क्या सिखाए, दैन्य आत्मा निवेदन, ये भक्ति के आधार है। सिखाओ शरणागति, तो भक्ति ही शरणागति है, और ये समर्पण के बिना ये कर्म अर्पण से जीव को छुटकारा नहीं मिल सकता है नारकीय जीवन से। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं जीवों को सबसे बड़ा नारकीय कष्ट का प्राप्ति कब होता है, कब होता है, जब भगवान को भूल करके अपने विषय को अपने भोग को पूर्ति करने में लगा रहता है। इसलिए कहते हैं सबसे बड़ा महापाप क्या है, कौन से पाप है, हां काम एस क्रोध एस रजगुण समुद्भव महासन महत्पापम, अपने ही इंद्रियों के भोग ही सबसे बड़ा पाप है। और यही काम ही क्रोध है, काम एस काम एस क्रोध। प्रभु जी हमारे गुस्सा बहुत बढ़ता है, अरे आपके गुस्सा ही काम ही है, और ये रजगुण से उत्पन्न हुआ है। मां की गर्भ में जब ये शरीर रहा, रज के द्वारा ये शरीर बना, और ये रज शरीर में ही काम उत्पन्न होता है, और ये काम जब फुर्ती नहीं होता है क्रोध। और इस काम का लक्षण क्या है? महाअसन, महान भक्की। कितने भी इसको भोजन कराओ, इसकी भूख मिटने वाला नहीं है। इसलिए जीवों को तभी असुर जोनि व नारकीय जोनि प्राप्त होता है जब इस कामना को और बढ़ाने के लिए उस पर क्या डालते हैं? घी डालते हैं। विषय विषा नले दिबा निसी हिया जले जुड़ा इते नाकईन उपाय। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ये काम हमको दिन रात जला रहे हैं, हम उसको बुझाने के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे, परंतु उसको और इंद्रिय भोग देकर के उसमें घी रूपी विषय को और डालते हैं और जले। जुड़ा हिते ना कई ने उपाय, इसको पानी से ही बुझा जा सकता है, परंतु हम क्या प्रयोग करते हैं? घी। आशा पास सतेरी बद्धा काम क्रोध परायणा इहंते काम भोगार्थान अन्नायेन अर्थ संजयान। देख लीजिए कि जीवन हम काम को पोषण करने के लिए क्या कर रहे हैं? घी इकट्ठा कर रहे हैं कि नहीं? धन, मनी, स्वीटर देन हनी, उसको इकट्ठा करते हैं, मीठी लगेगा। इसलिए भगवान कहते हैं इसको जो ये मार्गों को पकड़ लिया है, त्रिविधम नरक स्वेदः द्वारं नाशन आत्मनः काम क्रोध तथा लोभस तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। काम जब पूर्ति नहीं होगा तो क्रोध उत्पन्न होगा, और पूर्ति होने पर लोभ। तो इसी प्रकार तीनों चीज को हम, तीनों द्वार खोले हैं, कहां पर? नरक जाने के लिए। परंतु एक वैष्णव इस काम के द्वार पर ताला लगाता है, क्लोज करता है। किस प्रकार? उनको पीछे एक प्रेम के द्वार दिखाता है जो दुनिया को कोई नहीं दिखाए। इसलिए स्वयं भगवान इस अपने संदेश को देने के लिए सो पार्षद स्वयं धामा सह अवतरी, उन्होंने अपने धाम को यहां लेकर के आए। नहीं तो जीव जब तक इसको वो देखता नहीं है, अनुभव नहीं करता है, तब तक उसके अंदर कोई लालसा उत्पन्न नहीं होता है। जितने शहर में देखो जो एडवर्टाइजमेंट होता है, पहले तो होर्डिंग पर लगाते हैं, तो फिर लोग इसको खरीद करते हैं, एड्स देते हैं टीवी पर। तो भगवान भी यहां प्रचार करने के लिए एड्स लेके आए, कौन सा? अपने धाम और अपने पार्षद एजेंट्स। और जो इस करुणा को प्राप्त किए हैं, उन्होंने क्या करते हैं? सर्वत्र इस भावनामृत को ही प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी को यहां महाबाह कहा जाता है। इसी प्रकार आज एक महान उत्सव है, कौन सा है? विश्वरूप, जो चैतन्य महाप्रभु की बड़े भाई थे और नित्यानंद प्रभु की अभिन्न स्वरूप है। तो उन्होंने भी इस संसार को कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए, वो पहले चैतन्य महाप्रभु की पहले भी उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिए। जब उनकी पिता माता जगन्नाथ मिश्र और सची माता ने उनकी विवाह के लिए सब कुछ आयोजन कर चुके थे, तो विश्वरूप आदित्य आचार्य की जो पाठशाला था, तो वहां जाकर के गीता भागवतम की चर्चा करते थे और हमेशा ही जीव के कल्याण के लिए सोचते रहते थे। जैसे हम देखते हैं परंपरा में सड़ गोस्वामी पाद नाना शास्त्र की चर्चा करते करते ये भी सोचते थे कि जीवों की कल्याण कैसे हो। नाना शास्त्र विचारणे को निपुणों सदधर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्य सरान्य करो। तीनों लोक में कैसे कल्याण हो। तो विश्व रूप की व्याख्यान सुनकर कि अद्वैत आचार्य बहुत प्रसन्न होते थे, लेकिन जब वह भोजन करने के लिए देर करते थे तो सची माता चैतन्य महाप्रभु को भेजते थे कि जाओ तुम दादा को बुला के लाओ, बड़े भाई को। तो चैतन्य महाप्रभु उस समय बहुत छोटे थे, बालक, कोई वस्त्र नहीं पहनते थे, गांव में सब लड़के कैसे नंगे रहते। तो महाप्रभु खेलती खेलती, उनकी शरीर धूल धूसरित था, तो चल पड़े और वहां जितनी सारी विद्यार्थी और भक्त सब बैठे हुए थे जो शास्त्र के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो सारी ज्ञान का स्वरूप यही प्रकट हो गया, ऐसे उनको महसूस हुआ जो ही उनकी नजर चैतन्य महाप्रभु के ऊपर पड़। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु सभा में पहुंच करके एक इतनी मधुर शब्द से संबोधित किए तो सभी लोगों का हृदय प्रेम से भर गया। ओह, आज के बाद एक बार सुनकर के महाप्रभु कहे दादा घर चलो ना, देर हो रहा है। इतनी शब्द चैतन्य महाप्रभु से मुख से निकला, कहा कि ये वेद की ध्वनि जैसे हैं। तो सबको परमार्थ प्राप्त हो गया। उसके बाद ये सोचने लगे कि विश्वरूप का मन कोई घर में नहीं लग रहा है, इसलिए इनको विवाह कर देना अनिवार्य है। लेकिन ज्यों विश्वरूप को यह सूचना प्राप्त हुआ कि पिता माता ने उनके लिए विवाह के आयोजन किए हैं, तो उस रात को किसी को बताए ही घर छोड़ दिया। यही कहने कि भगवान की प्रति अनुराग किसकी बढ़ा हुआ है, ये आदर्श इस परीक्षा से पता चलेगा। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, भक्ति परेशान भाव विरक्ति अन्यत्र से। तो कौन कितने त्याग करता है उस त्याग से ही उसकी भक्ति की परिचय मिलता है, क्योंकि वो कृष्ण के प्रति जिसका अनुराग नहीं है वो त्याग नहीं सकता है। वैराग्य तो है, मरकट वैराग्य है, कपड़ा तो नहीं पहनते परंतु वैराग्य दिखाते हैं, परंतु अंतर बहुत अनुराग है बंदरियों के प्रति। स्मशान वैराग्य भी है, मृत्यु के समय सुजन के मृत्यु के समय थोड़ा से विरक्त होते, हाँ कौन किसका है, एक दिन सबको तो मरना ही है। फल्गु वैराग्य भी है, परंतु युक्त वैराग्य के लक्षण क्या है, अनासक्तस्य विषयान जतहम उपजंजते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उचित। तो जो भक्ति में युक्त नहीं है तो बाहर से भी कुछ भी दिखा हुआ करे, परंतु अंदर एक प्रिटेंडर की तरह चीटर की तरह वो के विषय को प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है, बकत ध्यान, श्वेत वस्त्र भी पहनता है, सेविंग हेड भी करता है, परंतु ध्यान किसमें है, बगुला के ध्यान की तरह, मछली पर ध्यान रहता है, विषय के प्रति ध्यान रहता है। विश्वरूप ने इतनी भक्ति में उनकी भाव बढ़ा हुआ था, तुरंत घर छोड़े। तो सभी दुखी हो गए और चैतन्य महाप्रभु का भी जो पढ़ाई चल रहा था ये सोचे ये भी एक दिन पढ़ते पढ़ते ये भी घर छोड़ेगा, इसलिए पढ़ाई बंद कर दो। जगन्नाथ मिश्र पढ़ाई बंद करते। तो चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि बहुत लंबा लीला है, तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने की बात, तो फिर अपने भाई की भी खोज की। उन्होंने दक्षिण भारत की जब यात्रा किए थे उस समय पंडरपुर होते हुए महाराष्ट्र होते हुए गुजर रहे थे, तो अभी जो हमारे मंदिर है पंडरपुर इस्कन मंदिर, तो वहां पर एक बहुत बड़ा अस्वस्थ वृक्ष है, तो उस वृक्ष के नीचे आज के दिन चैतन्य महाप्रभु क्या देखे कि अपने बड़े भाई समाधिस्थ हैं, अर्थात जो बड़े बड़े भक्त शरीर त्याग करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? समाधि, मृत्यु नहीं कह सकते, अर्थात अपनी उच्च स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु मतलब इस समय चतुर्मास चल रहा है ना, आज चतुर्मास से काल से चौथा महीना ना तीसरा महीना शुरू होगा, तीसरा महीना। तो इसमें जो चतुर्मास में तो उस समय भी था, अभी भी कुछ करते हैं जैसे भजनानंदी लोग हैं तो सेव नहीं करते हैं, अपने बाल सेविंग नहीं करते हैं, नाखून नहीं काटते हैं, बहुत बड़ा व्रत रखते हैं, पात्र में भी नहीं खाते हैं, नीचे ही खाते हैं, मुंह लगा कर हाथ से नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु जब देखे तो फिर उनको चतुर्मास व्रत तोड़ना पड़ा अपने बड़े भाई की ये संस्कार करने के लिए, तो फिर सेव किए। और ये जो नित्यानंद प्रभु की जो अभिन्न स्वरूप है, ये विश्वरूप जिन्होंने सृष्टि की कारण है, तो नित्यानंद प्रभु के शरीर में वो क्या हो गए? मर्स हो गए, मिल गए सबस्था। और अभी भी उनकी जो समाधि है हमारी इस्कन मंदिर का पीछे भीमा नदी के तट पर, भीमा नदी है ना इसको कह सकते हैं, कौन सा नदी है भीमा? हाँ चंद्रभागा, लेकिन प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में दिए भीमा नदी चंद्रभागा, यहां पर ये त्याग किए। और श्रील प्रभुपाद भी आज के दिन केशव गोस्वामी महाराज से आज संन्यास ग्रहण किए थे, ये है महाभाग इत्याग वा संन्यास। श्रील प्रभुपाद देखिए कि उन्होंने वृंदावन में अपने घर छोड़कर के वृंदावन में रहे राधा दामोदर मंदिर में, लेकिन केशव महाराज की जो उदार भावना था, वो चाहते थे कि अभय बाबू यहां आकर के हमारी जो मासिक पत्रिका है उसको संकलन करें, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको बहुत फ्रेज करते थे कि अभय कुछ भी लिख के दे तो इसको नदिया प्रकाश में उसको छपना चाहिए। तो केशव महाराज बहुत प्रभावित थे अभय बाबा से। तो श्रील प्रभुपाद सोचते थे कि चैतन्य महाप्रभु जो भविष्यवाणी है कि पृथ्वी ते अच्छी जाते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मरा नाम, ये कब होगा? ये लगता है कि निश्चित रूप से कि चैतन्य महाप्रभु की वाणी को अभी साकार करने के लिए समय आ गया है। और उन्होंने एक बार अनेक गौड़ीय मठ की सन्यासी बैठे हुए थे तो श्रील प्रभुपाद सबसे निवेदन किए थे कि हम लोग सब मिलकर के इस महाप्रभु के संदेश को पूरा विश्व में प्रचार करना चाहिए। परंतु उसमें से कुछ सन्यासी बहुत उत्साहित है कि हाँ भाई बाबू का अंदर भी इस प्रकार भावना है कि निश्चित रूप से हम लोग सब मिलकर के प्रचार करना चाहिए। परंतु कुछ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य के अंदर ये भावना थी कि हम किस मठ की प्रेसिडेंट बने और प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहे थे कि यदि आपके पास कुछ अर्थ हो तो आप अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु के संदेश को प्रकाशित करके आप प्रचार करना चाहिए पाश्चात्य जगत में, और आवश्यक हो तो मंदिर के मार्बल को भी बेच देना चाहिए तोड़ करके पुस्तक को प्रकाशन करने के लिए। इसलिए ये प्रभुपाद के अंदर पूरा दृढ़ आशा था कि मेरी गुरु की कृपा मेरी प्रति है, उनके आदेश भी हैं, तो मैं इस कार्य को किसी भी प्रकार संपन्न करूं। तो एक दिन उन्होंने स्वप्न में देखे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको कहते हैं अभय अभी समय हो गया है, तुम संन्यास ग्रहण करो और पाश्चात्य जगत जाओ प्रचार करने के लिए। और वो सोचते रहे क्या सचमुच है कि मुझे संन्यास लेकर के मैं पाश्चात्य जगत जाऊं? तो फिर उन्होंने दो दिन की बाद केशव महाराज से मिले मथुरा में, जो मथुरा में केशव मठ है। तो श्रील प्रभुपाद ने उस मंदिर में जो चैतन्य महाप्रभु के विग्रह हैं वो स्वयं खरीद करके लाए थे और केशव महाराज को भेंट दिए थे। और शायद राधा कुंज बिहारी उनके जो विग्रह हैं, उस विग्रह भी बनाने में जो खर्च हुआ था जयपुर में श्रीला प्रभुपाद, हाँ इसको भी पेमेंट किए थे। तो केशव मठ में श्रीला प्रभुपाद की बहुत आदर था, तो केशव महाराज जब श्रीला प्रभुपाद को मिले तो कहेगा अभय तुम संन्यास क्यों नहीं लेते हो, तुम्हारे अंदर प्रचार करने के लिए बहुत उत्साह है, परंतु भारत में सन्यासियों को बहुत मर्यादा देते हैं, तुम सन्यास ग्रहण करो। तो श्रीला प्रभुपाद बोले कि आपका जो कहना है ये मेरी गुरु महाराज के आदेश है, मैं भी स्वप्न में इसे देखा कि मेरी गुरु महाराज मुझे कह रहे हैं कि तुम सन्यास लेकर की पाश्चात्य जगत जाओ और प्रचार करो। तो फिर केशव महाराज वो आज का दिन स्थिर किए, लगभग आठ दिन ना नौ दिन था उसके बाद उनके भेंट होने की बात। तो केशव महाराज ने आज के दिन श्रीला प्रभुपाद और मुनि महाराज को आज के दिन उन्होंने सन्यास प्रदान किए। और इस सन्यास यज्ञ में नारायण महाराज ने क्या किए थे, यज्ञ वेदि बनाए थे और मंत्र उच्चारण किए थे। तो हम लोग परिक्रमा के समय वहां के सब गौड़िया मठ गए थे मथुरा में, तो रात को वहां रुके तो वहां एक ब्रह्मचारी ने नारायण महाराज के शिष्य ने बहुत सारी बातें बताई कि किस प्रकार है। उन्होंने एक मैगजीन में भी छपाए थे इसको कि श्रील प्रभुपाद मेरी सिख्या गुरु और मित्र, तो इस प्रकार छपाए थे। तो उसमें से ऐसे बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं कि श्रील प्रभुपाद किस प्रकार कोडिया मठ के सन्यासियों को भी उत्साहित करते थे कि प्रचार करने के लिए। तो इसलिए हमारी संस्था में भी हम सन्यासियों के लिए, सन्यासियों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं कि प्रचार भी बढ़े, परंतु सावधानी रखना चाहिए कि भगवान की कृपा शक्ति है उसको जीव ही त्याग कर देंगे और अपने अहंकार काम रूपी अहंकार में वशवर्ती हो जाएंगे तो फिर हमारे पैर फिसल जाएगा। तो हम आज जो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से जो जिज्ञासा कर रहे हैं ये सभी लोगों की कल्याण के लिए है। सत्कृतः कृष्ण संप्रश्नः जयात्मा संप्रसिद्धति। तो सभी लोगों की आत्मा कल्याण के लिए इसी प्रकार जिज्ञासा करना चाहिए, और केवल जिज्ञासा नहीं इसके उपाय को भी जानकर के हम लोग प्रयास करना चाहिए अपने अंदर जो दुख है उसको मिटाने के लिए। और जब अपने दुख को हम फिर मिटा करके अपने जीवन को सार्थक कर लेते हैं तो फिर दूसरे के हम परोपकार कर सकते हैं। जन्म सार्थक करी परोपकार। तो महाप्रभु की ये आदेश है। श्रील प्रभुपाद ने भी इस प्रकार जो हरे कृष्ण आंदोलन को पूरा विश्व भर में बढ़ाने के लिए और लोगों की कष्ट को दूर करने के लिए जो हमको प्रोसेस दिए हैं, तो अपने जीवन में इसको पालन करना चाहिए और दूसरे को शिक्षा देना चाहिए, तब फिर हमारे जीवन सफल हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। किसके कोई टिप्पणी है? कोई प्रश्न है? यस प्रभु जी, माइक्रोफोन दे सकते।
हरे कृष्णा।
यस प्रभु जी।
हरे कृष्णा। Is Lord Krishna the only exclusive authority to forgive the sins of mankind, or a Vaishnava saint like Hanumanji, or other saint like Jesus Christ, or a demigod, they are also empowered to forgive the sins, because sins brings in the suffering?
नहीं, आपका क्वेश्चन थोड़ा से अच्छे से आप बोलिए कि कृष्णा
is Krishna the only authority to forgive our sins?
Sins,
or any Vaishnav saint like Hanumanji, then other saint like Jesus Christ, or some demigod, they are also empowered to forgive the sins.
Krishna can forgive only one condition, that if you will surrender to me, sarva dharman parityajyam mamaikam saranam braja aham tvam sarva papebhyo. But devotees, they are more merciful than Lord. So that the devotees are called as Mahabadanya, magnanimous. Even a person is not surrender, still a pure devotee can forgive. He can deliver him. Pati tapavana hetu tapa. Lord says, Khipami ajastram asubhan asuri sveva jonisu. The person who has demonic nature, the Lord throw him in hellish condition. Naraka sveva jonisu. But a devotee is always hankering how to deliver them. So that one Chaitanya Mahaprabhu associates, what is his name? He asked the boon from Chaitanya Mahaprabhu, please, if you want to give some boon, then please deliver all the conditioned souls. And their karmas, give to me. I will suffer birth after birth. What is his name? Vasudev Datta. Vasudev. So, devotees like Jesus Christ, all our acharyas, dhira, dhira, jana, priya, priya karo, nirmat, sarana, satav. They are more merciful towards adhiri also. Okay?
Thank you.
Any question? Aur kiske koi prashna hai? Granthra Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Vishwarup Mahamahatsav ki jai. Srila Prabhupada Sanyas Mahamahatsav ki jai. Sri Sri Gaur Nitay ki jai. Sri Sri Radharas Vihari Lalita Visakha Jiv ki jai. Sri Sri Sitaram Lakpan Hanuman Jiv ki jai. Samabita Bhakta Vrind ki jai. Nitai Gaur Hari Primanande Hari Hari. Hare Krishna.